हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अक्षय और बाकी सब डॉक्टर के पास दौड़ते हुए पहुंचे। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? अक्षय ने बेताबी से पूछा। डॉक्टर ने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अभी उनकी स्थिति स्थिर है, हम उन्हें लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें पूरी तरह से आराम की जरूरत है। अगर अगले 24 घंटे तक उनकी हालत ऐसी ही रहती है तो चिंता की कोई बात नहीं होगी। अक्षय ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसकी छाती से भारी पत्थर हट गया हो। थैंक यू डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने धीरे से कहा, अभी नहीं, उन्हें पूरी तरह से आराम की जरूरत है। एक दो घंटे में शायद आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद अक्षय ने मिशिका और देविका को देखा। दोनों के चेहरे पर हल्की राहत थी। देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, मिशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। देविका ने अपने आंसू पोंछे और अक्षय के पास आकर बोली, भाई, हम सब मिलकर पापा को जल्दी ठीक कर लेंगे। अक्षय ने देविका के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमें अब बस उनकी देखभाल करनी है। मिशिका ने फिर अक्षय का हाथ थामा और कहा, हम सब एक हैं, अब कोई फिक्र वाली बात नहीं है। कुछ घंटे बीत गए थे, लेकिन अस्पताल की ठंडी हवा में एक नई उम्मीद की शुरुआत हो गई थी, और अब सभी दिल से दुआएं कर रहे थे कि अगले 24 घंटे में सब कुछ सामान्य हो जाए। हॉस्पिटल के बाहर अभी भी हलचल मची हुई थी। जैसे जैसे दिन चल रहा था, और भी लोग वहां आते जा रहे थे। उनके परिवार और दोस्त सब अंदर डॉक्टरों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंबिका से फोन कॉल पर बात होने के बाद अक्षय की आंखें बार बार अस्पताल के गेट की तरफ जा रही थीं, क्योंकि अक्षय को ऐसा लग रहा था कि अंबिका आज वहां पर जरूर आएगी। वहां हॉस्पिटल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, उन सब के दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अक्षय के पापा की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने उन लोगों को बताया था, उसके हिसाब से अगले 24 घंटे बेहद क्रिटिकल होने वाले थे। दिन के लगभग 12 बजने वाले थे, और तभी हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ी, लंबी और लग्जरी दिखने वाली डार्क ब्लू कलर की BMW और उसके साथ ही 6 कारें आकर रुकीं। कार के वहां पर रुकते ही एक साइड का दरवाजा खुला और उससे वेदांश बाहर उतरा। उसकी उपस्थिति हमेशा की तरह पावरफुल और इफेक्टिव थी। उसकी लंबी हाइट और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, और उससे भी ज्यादा सबका ध्यान खींच रहे थे उसके चारों तरफ खड़े बॉडीगार्ड्स। वेदांश अपने साथ बॉडीगार्ड को वहां पर लेकर आना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लेकर आना पड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और पिछली बार अंबिका के साथ जो हुआ उसकी वजह से भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए अवंत के साथ 3 और बॉडीगार्ड्स दूसरी कार में वहां पर आए थे, जिनकी कार वेदांश की BMW कार से पहले ही अस्पताल के सामने रुकी थी, और उन लोगों ने उतरकर पहले ही वेदांश को चारों तरफ से घेर लिया था और उसकी कार को अच्छे से कवर कर लिया था। उसके बाद ही वेदांश को बाहर निकलने दिया गया। वेदांश आत्मविश्वास से कार से बाहर निकला, लेकिन आज उसकी चाल में अजीब सी धीमी गति थी। वो बहुत ही शांत लग रहा था, शायद वो आज किसी लड़ाई के मूड में नहीं था। वेदांश के साथ अंबिका भी इस कार में वहां तक आई थी। वेदांश के इशारे पर उसी के एक बॉडीगार्ड ने आगे जाकर अंबिका की तरफ दरवाजा खोला, और फिर वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए कार से बाहर निकली। अंबिका ने नज़र उठाकर सामने की तरफ हॉस्पिटल देखा। वो कोई बहुत महंगा और बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, एक मीडियम रेंज का प्राइवेट हॉस्पिटल था, और अंबिका जानती थी कि उसकी फैमिली वाले इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो धीरे से आगे बढ़ी। लेकिन वेदांश, जो उसके इंतजार में रुका था, वो भी उसके साथ ही चलने लगा। अंबिका ने फिलहाल वेदांश पर इतना ध्यान नहीं दिया, और वो लगभग भागते हुए वहां अस्पताल के अंदर आ गई। अंबिका वहां रिसेप्शन पर आई और तुरंत ही उसने इमरजेंसी वार्ड के बारे में पूछा और अपने बाबा का नाम लेकर पेशेंट के बारे में पूछा, तो रिसेप्शन ने उसे तुरंत ही पूरी डिटेल बता दी, क्योंकि अंबिका एक बार पहले भी यहां पर अपने बाबा को लेकर आ चुकी थी और रिसेप्शनिस्ट इसलिए उसे पहचानती थी। अंबिका ने उस रिसेप्शनिस्ट से कहा, थैंक यू सो मच। चेहरे पर हल्की प्रोफेशनल स्माइल के साथ रिसेप्शनिस्ट उसकी बात के जवाब में कुछ बोलने वाली ही थी, उससे पहले ही अंबिका भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे पहले फ्लोर पर ही जाना था, इसलिए वो लिफ्ट की तरफ नहीं गई। अंबिका के इस तरह से भागने पर वेदांश कुछ ज्यादा ही पीछे रह गया था। उसने इस तरह से अंबिका को देखकर एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, परिवार के नाम पर मुझे ही भूल गई ये लड़की। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम भी तो नहीं किया है कि वो मुझे याद रखें। और कल रात तो पिछली रात की बात याद आते ही वेदांश ने एकदम से अपनी आंखें कसकर बंद कर दीं और फिर वो भी उसी तरफ चला गया जिधर अंबिका गई थी। अंबिका जैसे ही वहां पर ऊपर आई, उसने देखा कि कॉरिडोर में काफी सारे लोग खड़े थे। वो भागकर वहां पर आई थी, लेकिन अक्षय और देविका को देखकर वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। सबसे पहले देविका का ध्यान उसकी तरफ हुआ और आज इतने दिनों के बाद उसे देखकर देविका के दिल में भी एक तूफान उठने लगा। उसने अपनी बड़ी बहन को दूर से देखा और आंसू अपने आप उसकी आंखों में छलकने लगे। दीदी, देविका ने जोर से पुकारा और दौड़कर अंबिका के गले लग गई। अंबिका, जो अपने बाबा की हालत के बारे में सुनते ही तुरंत अस्पताल आई थी, देविका को गले लगाकर शांत करने लगी। देवी, सब ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ हूँ, बाबा ठीक हो जाएंगे। देविका के इस तरह से भागने पर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ हुआ और जैसे ही मिशिका ने अंबिका को देखा, वो समझ गई कि जरूर वेदांश ही उसे लेकर आया होगा, क्योंकि जहाँ तक वो अपने भाई को जानती थी, वो अंबिका को अकेले तो नहीं भेजेगा और ना ही किसी के साथ। इसलिए मिशिका तुरंत ही कॉरिडोर के लास्ट में जाकर एक खाली कमरे में छिप गई। अभी वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी और बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन वहां से देखने पर वो किसी को भी नजर नहीं आती। अक्षय ने भी मिशिका पर ध्यान नहीं दिया और वो एकदम से अपनी दोनों बहनों को गले मिलते हुए देखने लगा। टू बी कंटिन्यूड। क्या वेदांश और अक्षय के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या वेदांश और अंबिका को पता चलेगा कि मिशिका जिंदा है और उनके साथ रह रही है? और कैसा होगा वेदांश का रिएक्शन मिशिका को जिंदा देखकर? वो खुश होगा या फिर गुस्सा? क्या लगता है आप लोगों को, बताइए कमेंट में। क्या वेदांश को हो चुका है अंबिका से प्यार और इसीलिए है उसे अंबिका की इतनी फिकर? क्या वो एक्सेप्ट करेगा अपनी फीलिंग्स को? बताइए कमेंट में इन सारे सवालों के जवाब।